आज के मुख्य समाचार वृषाली जैन के साथ। विक्टोरिया में फिर टूटा कोरोना मामलों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड, एक बड़ा शहर लॉकडाउन में। भारत में एक्टिव केसों की संख्या 205 दिनों में हुई सबसे कम। और मटिल्डा की कप्तान सैम केर फुटबॉल के प्रतिष्ठित सम्मान के लिए हुई नामित। और अब खबरें विस्तार से। विक्टोरिया में आज फिर राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में आज 1965 स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले और 5 मृत्यु दर्ज की गई हैं। विक्टोरिया में आज दर्ज हुए मामले महामारी की शुरुआत से अब तक राष्ट्र में कहीं भी दर्ज हुए सबसे अधिक मामले हैं। उधर विक्टोरिया के बॉर्डर पर स्थित शहर मिलड्यूरा 7 दिन के लिए लॉकडाउन में जा रहा है। मिलड्यूरा में लॉकडाउन के नियम मेलबर्न जैसे ही होंगे, पर मिलड्यूरा में रात्रि कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। विक्टोरिया के बढ़ते मामलों की संख्या को हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्यवाही पुलिस मंत्री डैनी पियर्सन का कहना है कि इस बीच राज्य की पुलिस की साख पर कोई भी आंच नहीं आई है। बताते चलें कि बीते कुछ दिनों में विक्टोरियाई पुलिस अधिकारियों पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वे प्रतिबंधों को लागू करने की जगह छुट्टी लेकर या इस्तीफा देकर खुद को बचा रहे हैं।
No, oh, no, I don't believe so. I mean, I think that the people I speak with are in awe and are inspired by Victoria Police. Our officers have done an amazing job.
विक्टोरिया में 16 साल से ऊपर के 85% व्यक्तियों को कोविड रोधी टीके की एक खुराक और 57% लोगों को पूर्ण टीका प्राप्त हो चुका है। उधर विक्टोरिया में अल सुबह एक बार फिर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर पर स्थित मरेविल में इस संबंध में करीब 100 रिपोर्टें दर्ज की गई हैं। राज्य की आपातकालीन सेवाओं का कहना है कि यह भूकंप 4.8 रिक्टर तीव्रता का था, जिसका केंद्र मरेविल ही था। ये झटके सुबह 4 बजे के करीब महसूस किए गए। बताते चलें कि राज्य में 22 सितंबर को विक्टोरिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप महसूस किया गया था। न्यू साउथ वेल्स में 580 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में आज 11 कोरोना संबंधी मृत्यु भी दर्ज की गई हैं। प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे का कहना है कि राज्य में बहुत जल्द 16 साल से ऊपर के 90% व्यक्तियों को कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक मिल जाएगी।
We know that as we open up, case numbers will increase. But what has been key to keeping people safe is our high vaccination rate. We have the highest vaccination rate in the country, and importantly, we're coming close on that first dose mark to 90%.
यह तब आता है जब आने वाले सोमवार यानी 11 अक्टूबर से पूर्ण टीका पा चुके निवासियों के लिए कोरोना प्रतिबंधों में छूट लागू हो जाएगी। हालांकि श्री पेरोटे ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि जिन लोगों को पूर्ण टीका नहीं मिला है उन पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी या नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हजार्ड का कहना है कि जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लगवाया है उनकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे टीकाकरण करवाएं।
Please go and get vaccinated. It's not really reasonable or fair that 70% or even when we get to 80%, it's not fair that 70 or 80% of the community have done what they can to keep the rest of us safe. I would just say that our obligation is for all of the New South Wales residents to keep our entire New South Wales community safe.
इसी बीच राज्य की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैरी चैंट ने सूचना दी है कि राज्य में एक नए तरह का डेल्टा वेरिएंट भी पाया गया है, लेकिन फिलहाल यह चिंता का कारण नहीं है। उधर ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में आज 25 नए कोरोना मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 12 को मौजूदा प्रकोप से जुड़ा पाया गया है। बाकी मामले अब भी जांच के दायरे में हैं। मुख्यमंत्री एंड्रू बार का कहना है कि कैनबरा विश्व का सबसे अधिक टीकाकरण पा चुका शहर बनने की राह पर अग्रसर है।
We now have 97.1% of our eligible 12+ population with the first dose of a vaccine. 12 to 15 year olds have undertaken the fastest vaccination uptake and they are now at nearly 85% first dose.
न्यू साउथ वेल्स की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैरी चैंट ने सूचना दी है कि ऑस्ट्रेलिया के इम्यूनाइजेशन एडवाइजरी ग्रुप अटाजी ने अति क्षीण प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर चैंट का कहना है कि यह बूस्टर डोज कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों या उन मरीजों को जो ऐसी दवाएं लेते हैं जिनसे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम होती है के लिए उपलब्ध रहेंगी.
And this is due to emerging evidence that some immunocompromised individuals have not as good immune response and need that third dose to get that best chance of protection. So for the third dose, an mRNA vaccine, Moderna or Pfizer, is the preferred to AstraZeneca, and the recommended interval between that third dose is 2 and 6 months after the second.
इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी और अधिक खतरे में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए योग्यता के मानक आने वाले हफ्तों में घोषित किए जाएंगे. और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक सम्मति से लॉन्ग कोविड स्थिति की आखिरकार एक अधिकृत परिभाषा जारी कर दी है. कोरोना से संक्रमित होने के बाद सामने आने वाली ये बीमारी, जिसे पोस्ट कोविड भी कहा जा रहा है, संक्रमण के होने के 3 महीने के अंदर अंदर सामने आने लगती है और इसके लक्षण कम से कम 2 महीने तक दिखाई देते हैं. इस बीमारी को किसी भी और इलाज के साथ नहीं समझा जा सका है. क्लिनिकल मैनेजमेंट की मुखिया डॉक्टर जैनेट डियाज का कहना है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच एक राय नहीं बन पाने के कारण इस बीमारी के शोध और इलाज दोनों ही मुश्किल हैं.
This is an important step forward to standardize the recognition of patients living with post-COVID-19 condition. We hope it will help clinicians and health workers recognize patients and start them on appropriate treatments and interventions and care pathways. We hope that policymakers and health systems will set up and implement integrated care models to care for these patients.
उत्तरी अफगानिस्तान में एक शिया मस्जिद में हुए बम धमाके ने सौ लोगों की जान ले ली है या उन्हें घायल कर दिया है. यह अंतर्राष्ट्रीय सेना के अफगानिस्तान से हटने के बाद हुआ सबसे बड़ा हमला है. इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है. तालिबान के अधिकारियों ने पहले कहा था कि इस हमले में 100 लोग गंभीर रूप से घायल हुए या उनकी जान गई, जबकि स्थानीय मीडिया ने यह आंकड़ा 50 के करीब बताया था. ताज़ा खबर के मुताबिक यह आंकड़ा 300 के करीब है. उधर अमेरिका का एक दल दोहा में तालिबान के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहा है. यह अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से हटने के बाद दोनों दलों की पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी. अमेरिका के इस उच्च स्तरीय दल में यूएस एड, अमेरिकी खुफिया विभाग और राज्य विभाग के सदस्य शामिल हैं. इस बैठक के जरिए वे अमेरिकी और दूसरे देशों के नागरिकों का अफगानिस्तान से सुरक्षित घर वापस आने का रास्ता साफ करना चाहते हैं. अमरीकी दल अपने अगवा हुए नागरिक मार्क फ्रेरिक्स को भी छुड़वाने के प्रयास कर रहा है. और अब खबरें भारत से. भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 21,257 नए मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या 3,39,15,569 हो गई है. पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 271 लोगों की इस महामारी से जान भी गई है. अब तक देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 4,50,127 हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल 2,40,221 कुल एक्टिव मामले हैं, जो पिछले 205 दिनों में सबसे कम है. भारतीय राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक कुल 93.17 करोड़ कोरोना टीकों की खुराकें वितरित की जा चुकी हैं. करीब 70 साल बाद सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का प्रभुत्व फिर से टाटा समूह के हाथ में आ गया है. टाटा सन्स ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है. रतन टाटा ने टाटा सन्स की 18,000 करोड़ रुपए की बोली स्वीकार करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है. हालांकि कर्ज के तले दबी एयर इंडिया को फिर से पटरी पर लाने के लिए काफ़ी कोशिश की ज़रूरत होगी. श्री रतन टाटा ने ट्वीट के जरिए कहा है कि एयर इंडिया को फिर पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती तो है, लेकिन इस एयरलाइन के मूल संस्थापक श्री जेआरडी टाटा को आज टाटा समूह पर बेहद गर्व होगा. और अब डॉलर का हाल. आज यानी शनिवार को यह खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55.09 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 73 सेंट्स रही. और अब खबरें खेल के मैदान से. मटिल्डा की कप्तान सैम केर को साल 2021 के महिला बैलन डे ओर की 20 नामों की प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा गया है। बैलन डे ओर विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब है और इन्हीं 20 नामों की सूची में से एक किसी को दिया जाता है। सुश्री केर के गोलों ने न केवल चेल्सी को चैंपियन लीग के फाइनल तक पहुंचाया, बल्कि मटिल्डा की टीम के लिए टोक्यो में 6 गोल दागने के बाद अब सैम केर वुमेन सुपर लीग की तालिका में भी शीर्ष पर पहुंच गई हैं। 28 वर्षीय केर चेल्सी की उन 5 खिलाड़ियों में से एक है जिन्हें बैलन डे ओर की इस साल की सूची में नामित किया गया है। और अंत में एक नज़र कल यानी रविवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप छाई रहेगी, यहाँ अधिकतम तापमान 23 डिग्री जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, यहाँ अधिकतम तापमान 17 डिग्री जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी कल हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, यहाँ अधिकतम तापमान 15 डिग्री जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में भी बौछार के आसार हैं, यहाँ अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी कल बूंदाबांदी हो सकती है, अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल अधिकांश रूप से धूप छाई रहेगी, यहाँ अधिकतम तापमान 29 डिग्री जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में भी कल अधिकांश रूप से धूप ही धूप है, अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप बने रहने की संभावना है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 57 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।